ओम शांति। 4 जनवरी 2023-24 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। मुख्य क्या है? याद की यात्रा। याद से आयु बढ़ेगी। ये कैसे समझ में आया कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी? ऐसा हो सकता है? बाबा तो बता रहे, पर तो हमें क्या समझ में आ रहा है? बाबा तो बताने क्या क्या बता देता है, हमें क्या समझ में आया कि आयु बढ़ सकती है? उतना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारा अकर्म का खाता जमा होगा। तो हमारी आयु सतयुग में 150 साल होगी लगभग। अब कोई हमारी आयु बढ़ने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी जो गलतफहमी हो जाती है कि अब हम बाबा को याद करेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब कोई आयु नहीं बढ़ेगी, अब तो जितनी हमारी आयु है उतनी ही रहेगी और कल्प बाद भी हमारी जितनी आयु है उतनी ही रहेगी। हमारी आयु में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे कल्प में हमारा नाटक लिखा हुआ है, हमारा ड्रामा फिक्स है। जितना समय हम सतयुग में रहे थे उतना समय सतयुग में रहेंगे, अब जितना समय रहे हैं उतना समय रहेंगे। हमारे पार्ट में 1 सेंटीमीटर की भी, 1 सेकंड की भी कमी या कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हमारी आयु कोई बढ़ने वाली नहीं है। अब हम योग लगाएं तो हमारे बीमारियां ठीक हो जाएं या हमारी आयु बड़ी हो जाए, ऐसी कोई भी बात नहीं। और ये बात हमें समझनी है। बहुत सारे भाई बहनों के वीडियोस में आप देखेंगे वो इसी प्रकार से कहते हैं, आप योग लगाओगे तो आयु लंबी हो जाएगी। कैसे लंबी हो जाएगी? कैसे युग लंबा हो जाएगा? 1 सेकंड युग लंबा नहीं हो सकता। हाँ, ड्रामा में जरा भी परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल ये होगा कि कल्प पहले भी हमने बाबा की श्रीमत पर चलकर अकर्म का खाता बढ़ाकर सतयुग वाली लंबी आयु प्राप्त की थी और अब भी हम करेंगे। विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि अब कल्प पहले भी हमने बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने विकर्मों को खत्म किया था, थे ने? और हमने अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाया था और अब भी हम बनाएंगे। याद में रहने वालों की अवस्था ये वर्तमान में तुरंत दिखाई देता है। अब तक की जो 2 बातें थी वो भविष्य में थी। तुरंत जो दिखाई देता है याद में रहने वालों की अवस्था, बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होता है, ये वर्तमान में होता है। यदि हमारा बोल चाल फर्स्ट क्लास नहीं है, हमारी अवस्था यदि खुश नहीं है, तो जरूर हम कहीं ना कहीं वर्तमान में गलती कर रहे हैं या कोई ना कोई भूतकाल में ऐसी गलती करके आए हैं जिसका फल आज हमको मिल रहा है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है इस बात को। प्रश्न, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? देवताओं से भी ज्यादा खुशी आपको क्यों होनी चाहिए? हम स्वयं परमात्मा से पढ़ रहे हैं, जिसकी झलक देखने को सारी दुनिया तरस रही है, वो हमें परम धाम से आके पढ़ा रहा है। इतना श्रेष्ठ भाग्य इस धरती पर और किसका हो सकता है? सतयुग में भी हम किससे पढ़ेंगे, किसके बच्चे कहलाएंगे? याद नहीं रहेगा, परंतु ये तो होगा ना कि हम देवताओं के बच्चे होंगे।
ये याद रहेगा
भाई, हमारा बाप तो हमें याद रहेगा ना, जो हमारा बाप सतयुग में होगा वो तो हमें याद होगा ना कि ये हमारा पिता है। भाई शरीर का पिता क्या है? देवता। आज हम परमात्मा के बच्चे बने, जिस समय हम परमात्मा के बच्चे बने तो हमें समझ में आया कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, नहीं तो हम अपने जो लौकिक शरीर का बाप था उसी के बच्चे समझते थे, और उनके बच्चे समझने में अब ईश्वरीय संतान समझने में कितना बड़ा अंतर है। वो विनाशी वो शरीर छोड़ के चला गया, और ये अविनाशी, और उसके पास मान लो 1 लाख था, करोड़ था, 1 अरब था, उसके मालिक थे हम, और अब हम सारे विश्व के मालिक हो गए। कितना बड़ा अंतर आ गया, ठीक है ना। अब हम सारे विश्व के मालिक हैं, सारे संसार का जो मालिक है वो हमारा बाप है, परंतु सतयुग में वो नशा तो नहीं आ सकता ना। हमें वहां नशा होगा, परंतु हमें ये नहीं पता होगा कि इससे बड़ा भी कोई बाप होता है, देवताओं से भी बड़ा कोई बाप होता है। जैसे हमें कलयुग में नहीं पता था, हम कहते भल थे परमात्मा हमारा पिता है, परंतु कभी हमारा दिल खुश नहीं होता था कि वो हमारा पिता है। अब जितना खुशी मिलती है कि वो हमारा पिता है, क्योंकि परमात्मा से हमें अब गुण शक्तियां मिल रही हैं, खजाने मिल रहे हैं। तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, ऐसी लॉटरी जो दुनिया में किसी और की नहीं निकल सकती। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में तुम किसके बच्चे होंगे? देवताओं के बच्चे होंगे, और देवताओं से पढ़ेंगे, और उसके बाद मनुष्य के बच्चे और मनुष्यों से पढ़ेंगे। लेकिन लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे, और वो भी परम धाम से आकर। तुम अभी क्या बन रहे हो? स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, तुम्हारे में सारी नॉलेज है जो दुनिया में कहीं मिल नहीं सकती, किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं मिल सकती, कोई भी धर्म पिता नहीं दे सकता सिवाय परम पिता परम आत्मा के। गीत, जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, नए युग में होते हैं देवी देवताएं, हैं वे भी मनुष्य परंतु उनके गुण देवताओं जैसे होते हैं। वे हैं वैष्णव डबल अहिंसक, और अभी मनुष्य डबल हिंसक हैं। मारा मारी भी करते हैं, काम कटारी भी चलाते हैं। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक, मारामारी भी करते हैं, काम कटारी भी चलाते हैं। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। वे डबल अहिंसक, वे क्या हैं? डबल अहिंसक देवी देवताएं थे। उन्हों का भी राज्य था, कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती थी, कल्प की आयु लाखों वर्ष होती थी। समझे ना? दुनिया वाले कहते ना, तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। सतयुग की वर्ष यदि लाखों वर्ष होती जैसे कहते हैं, तो फिर तो कोई भी ख्याल नहीं था, नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं, कोई 7,000 वर्ष कहते हैं, कोई 10,000 वर्ष कहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम। कहाँ रहते हैं? शांति धाम में। हम पंडे हैं, हम कौन है? हम पंडे हैं, कहाँ के? रास्ता कहाँ का बताएंगे? शांति धाम का रास्ता बताने वाले हैं। इस यात्रा का कोई वर्णन नहीं, दुनिया की किसी भी किताब में इसका वर्णन नहीं है, और जिन्होंने वर्णन कर रखा है तो वो सारा गलत। जैसे दाऊद इब्राहिम के लिए कह रहे हैं कि बिना वो 72 हुरों के पास गया, क्योंकि उनको जिहाद वाले जो है वो उनको सिखाते हैं कि यदि आप खुदा की याद में, खुदा के डायरेक्शन पर अपना मृत्यु भी प्राप्त करेंगे तो तुम स्वर्ग में जाएंगे। जैसे हमारे गीता में लिखा गया कि हे अर्जुन, युद्ध में लड़ते लड़ते भी तुम्हारा शरीर छूटा तो तुम स्वर्ग में जाएंगे। उनका भी यही वर्णन है कि तुम जन्नत को प्राप्त करेंगे, और जन्नत का वर्णन उन्होंने बहुत ऐसा भला किया है जो उनको वर्णन कर करके उनको क्या कर देते हैं, अंधा कर देते हैं। वहां तुम्हें शराब मिलेगी, वहां तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी, वहां तुम्हारे पास ये होगा वो होगा, हुरे होंगी, और मतलब जो नर्क की बातें हैं वो सारी उनको लालच में दे रखी हैं, जिसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार होते हैं। ठीक है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मरो और वहां जाकर खुदा के घर में रहो आराम से। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं, बल गीता में अक्षर है मन मना भाव, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता? जब बाप आकर समझाए तब किसकी बुद्धि में आए? इसमें समय, इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो, मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर, तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो, तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा का कोई मनुष्य तो समझ ना सके, निराकार को हाथ पांव कहां से आया? श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है, भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत हैं, चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर ये समझाए, और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं का भी आत्माओं को भी दिखाना है, आत्माएं ही आत्माएं दिखाई देंगी, फिर सूक्ष्म बतन, उनके नीचे मनुष्य लोक भी बनाएंगे। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं ये दिखाएंगे, मनुष्य कैसे पतित बनते हैं फिर कैसे पावन बनते हैं ये दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई इन्वेंशन निकलती जाएंगी, प्रदर्शनियां बहुत प्रकार की बनती जा रही हैं। अब कितने चित्र हैं? उस समय जितने चित्र हैं उतनी सर्विस भी करनी है, जो जो चित्र बनते जाएं आते जाएं फिर वो सर्विस भी करनी है। चित्र बना के रख दिया इसका भी कोई फायदा नहीं है, फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा, कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते, बेशक कोई लेट आए और पुरुषार्थ करे तो भी वो माला का दाना बन सकता है, सतयुग के आदि में आ सकता है। नवधा भक्ति करने वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते, नवदा भक्ति का मतलब है कि हर प्रकार की जैसा भी भक्ति के नियम है हर टाइम भक्ति में लगे रहे, तत्पर रहे, ठीक है। ये नहीं कि भक्ति छोड़ के बैठ जाए। कोई लोग कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, 9 प्रकार की सारी हर प्रकार की भक्ति वो करे, और कईयों का विचार है कि भाई भक्ति में 24 घंटे जो डूबा रहे, कोई भी क्षण उसका ऐसा ना जाए कि जो भक्ति ना करे, तो भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। और बाबा ने आके बताया, बच्चे जितना तुमने भक्ति की है उतना तुम्हें अब ज्ञान की प्राप्ति होगी। भक्ति कम की है तो ज्ञान भी आपको कम समझ में आएगा, और भक्ति आपने बहुत अच्छी की हुई है पिछले जन्मों में तो अब आपको ज्ञान अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा नंबर वन क्यों गया कि इसने सबसे जास्ती भक्ति की। और भी कोई करे तो वो भी इस नंबर को पा सकता है परंतु ला नहीं है। परंतु बाबा क्या कहते हैं, ला नहीं है, नियम नहीं है कि कोई और इतनी ज्यादा भक्ति कर सके। तब उन्होंने को साक्षात्कार होता है, यहां भी ऐसे निकलेंगे जो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, तब उनको वहां साक्षात्कार होता है और यहां भी ऐसे निकलेंगे, रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। चांस सबको है, मौका सबको है, कोई भी बनना चाहे बन सकते हैं, ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता, कोई रह नहीं सकता। सब तरफ पैगाम देना है, शास्त्रों में है, एक रह गया तो उलाना दिया। ये चित्र अखबार आदि में भी पड़ेगा, ये जो चित्र बनाए है ना बाबा ने, बाबा ने कल शास्त्रों में एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति रह गया, उसने भगवान से कहा कि भगवान मैंने क्या कसूर किया था, मुझे तुमने क्यों ज्ञान नहीं दिया। परंतु बाबा कहते कोई भी आत्मा नहीं रहेगी, कोई भी आत्मा ये शिकायत नहीं कर सकेगी, हे प्रभु हे ईश्वर आप परम धाम से इस धरती को स्वर्ग बनाने आए थे, मुझे संदेश क्यों नहीं दिया, मेरे को क्यों नहीं बुलाया। ये कंप्लेन करने का अवसर किसी भी आत्मा को नहीं मिलेगा। सबको मालूम पड़ता पड़ेगा कि बाप आया हुआ है, जब पूरा निश्चय होगा तब वो दौड़ेंगे, और जिनको जितना कम निश्चय होगा वो उतना सोए रहेंगे, कितना उनको जगा लो जागेंगे नहीं।
हाँ
हाँ
अनेक धर्म है, मतलब इससे संबंधित नहीं है, वो अपनी उसमें आराधना में लगे रहते हैं,
वो आएंगे लास्ट में आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो सत्युग त्रेता में आना ही नहीं है ना। सत्युग में 2 करोड़ आत्माओं ने आना है, 2 करोड़ आत्माओं ने सत्युग में आना है, और अभी तो 1 करोड़ भी
नहीं।
1 करोड़ क्या मतलब, जो है ना लाखों में है सिर्फ, ठीक है ना, 1 करोड़ भी नहीं हुए, सत्युग की जनसंख्या तक ज्ञान नहीं गया, ठीक है ना। अब ज्ञान बहुत फास्ट स्पीड से जाएगा, बहुत फास्ट स्पीड से जाएगा, ठीक है ना। और ये सारे बच्चे जो अभी थोड़ा सुस्त है, जो सुनने समझाने में थोड़ा सा आलस कर रहे हैं, कैसे समझाएं, उनके पास इतनी अच्छी सुविधा हो जाएगी कि वो तुरंत ज्ञान को देने में सहयोगी हो जाएंगे। क्योंकि अब इतने हमारे भाई बहन यूट्यूब पर आ गए, हर एक अपनी तरफ से बहुत अच्छी सेवाएं करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो वीडियो वो सब अब सबके पास पहुंचेंगे, और जब उनको चारों तरफ कहीं भी शांति सुख नहीं मिलेगा तो उनको एक ही तुरंत आएगा, ब्रह्मा कुमारी वाली साइट पे जाए, ब्रह्मा कुमारी से मिले, तो वो तुरंत सुनेंगे, बस उनको समझ में आ जाएगा। परंतु हर एक को समझ में तो उतना ही आना है ना, जितना जितना उनका पाठ है। नामाचार निकलता ही रहेगा, नवयुग सत्युग को ही कहा जाता है, नवयुग अखबार भी निकलती है, कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में भी ये पुराना किला किचड़ा आदि हो ना सके। आजकल के जो पुरानी दुनिया का जो समान है वो नई दुनिया में नहीं होगा। एक मुरली में बाबा सीधा स्पष्ट करते कि कोई मकान तोड़ते हैं तो उसमें से अच्छा सामान निकाल कर रख लेते हैं और फिर मकान में लगाते हैं, परंतु यह कोई भी चीज जो अब है वो सतयुग में नहीं होती, नहीं होती, एकदम हर चीज नई होती, पुरानी चीज का नए मकान में कोई रिश्ता नहीं। ये क्या करें, कितना आदि हो ना सके, अभी तो हर चीज टेढ़ी बाकी हो गई है। अब तो बस काम चला हुआ है, बस ठीक है ऐसे बना दो ऐसे मिला दो, मतलब वहां हर चीज परफेक्ट होती है। सत्युग में सब तत्व भी ऑर्डर में होते हैं, पांचों तत्व एकदम ऑर्डर में, कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी भूकंप नहीं आएगा। आज चारों तरफ संसार के अंदर त्राही त्राही मची पड़ी है, कहां बर्फ है, कहां सुनामी है, कहां भूकंप है और कहां आग लगी हुई है। चारों तरफ देखो कि एकदम विपरीत स्थिति है। यहां तो पांच तत्व भी तमो प्रधान है, वह सब सत्व प्रधान होते हैं, तो हर एक तत्व से सुख मिलता है। दुख का नाम ही है स्वर्ग, दुख का नाम भी नहीं है और उसका नाम है स्वर्ग। जहां दुख का नाम नहीं है उसका नाम है स्वर्ग। ये सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन गए हैं, बन रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, सत्व प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चल रहे। हम बन गए हैं तमो प्रधान, अब बाबा आए हैं हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं, सत्व प्रधान की मंजिल पर चल रहे हैं अब। और सब अंधियारे में है, सारी दुनिया देखो कितना अंधियारे में है, हम रोशनी में हैं, हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। ये सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, वे तो मंथन नहीं करेंगे। शिव बाबा सिखलाने वाला है, वे तो मंथन नहीं करेंगे, ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो, कोई का तो मंथन बिल्कुल नहीं चलता। पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है, पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ, पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ। परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सब को वापस ले जाता हूं। वे लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते हैं, उनकी ये क्या महिमा, उनकी क्या महिमा करेंगे। महिमा तो तुम्हारी है, महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। हीरे जैसा जन्म और कोड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो, तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। तुमको क्या मिली है, लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं, वहां तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, वहां तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं और तुम आत्माओं को परम पिता परम आत्मा पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना, फर्क हो गया ना। तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है, राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते हैं, दुनिया में जब ज्ञान नहीं था, परमात्मा जब तक नहीं आए तो वो क्या था, अज्ञान काल। क्योंकि परमात्मा आते हैं तो ज्ञान शुरू होता है, परमात्मा से पहले जो भी था वो क्या था, अधूरा ज्ञान, अज्ञान था। अज्ञान काल में जो करते हैं वो उल्टा ही होता है। वो क्या होता है? उल्टा ही होता है। छोटे पन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालिग बुद्धि होती है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी सगीर बुद्धि होती है, जितना समझ है, मतलब एकदम उनमें कोई खोट नहीं होता, मेरी तेरी ये बातें नहीं होती। पर तो जितना बड़ा होता जाता है, मेरा है तेरा है। आज तो बच्चा पैदा होता है, उसको पता है ये मेरी मम्मी का है और ये पापा का है, ये दादा का है, उसका है। और वो फिर उनको वैसे रखता है अलग अलग, ये उसका है, ये उसका है, पहले से पता है उसको। और वो पहले से ये फर्क रखता है, ये आपने क्यों पहना, ये मेरी मम्मी का है। मतलब आजकल तो गंध बहुत है, ये गंध है मतलब, क्योंकि आजकल तो शुरू से मेरी तेरी लग जाती है, रोने पीटना शुरू कर देते हैं। बच्चे जो बिल्कुल सगीर बुद्धि हैं, वो इतना फर्क करते हैं कि ये मेरी मम्मी का, तुमने क्यों पहना, इसको उतारो, ये मेरी मम्मी को दे दो। तो परंतु पहले बच्चों को ये फर्क नहीं पता होता था। गोद वाले, बाबा बता रहे, गोद वाले बच्चों की भी क्या कर देते हैं, आजकल सगाई करा देते हैं। बड़े होकर क्या बनेंगे पता नहीं, फिर लेना देना शुरू कर लेते हैं कि ठीक है भाई, बस सगाई हो गई है तो जो दुनिया की रीति रिवाज के हिसाब से लेना देना भी शुरू कर देते हैं। वहां शादियां कितनी रॉयल होती हैं, तुमने सब साक्षात्कार किया है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं योग से अपनी आयु बढ़ाओ, बच्चे समझते हैं योग में हम ढीले हैं, याद में रहने लिए माथा मारते हैं। योग और याद में अंतर खत्म कर दिया। कैसे करते देखो, योग में हम ढीले हैं, बाबा की श्रीमत पर चलने में हम क्या हैं, ढीले हैं, और याद में रहने के लिए माथा मारते हैं, चित्र को याद करने में माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते। अब माथा मारते हैं परंतु जो याद में रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो मधुबन में रहे, बाबा के घर में आके रहे हैं, तो उनका चार्ट तो बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोरख धंधे में रहते हैं, बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतो प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते, काम करते, 4 घंटा मुझे याद करो। भोजन कम से कम, नहीं सॉरी 8 ही है ये, 8 घंटे, मतलब वो बीच में कट गया, हाँ कट कर दिखाई दे रहा था। हिंदी वाला 4 भी होता है ना, 8 में थोड़ा सा ऊपर से कट लग जाए तो हिंदी का 4 दिखाई देता है, तो कट लगा हुआ था। तो कहने का मतलब 8 घंटे कम से कम, बाबा कहते भोजन बनाते, काम करते, 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं 6 से 8 घंटा योग में रहता हूं तो बाबा मानेगा नहीं, बाबा नहीं मानेगा। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते हैं, आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते हैं। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, चाहे आपने 2 घंटे मुरली सुनी, पर तू मुरली सुनना या मुरली सुनाना, ये दोनों याद नहीं है। ये तो धन कमाते हो, अब कितना ध्यान से सुनते हो उतना आपको ज्ञान धन मिल जाता है। आप ध्यान से नहीं सुनते तो कोई ज्ञान धन नहीं मिलता। याद में तो सुनना बंद हो जाता है, याद में तो सुनना बंद, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? याद में जब हमने सुनना नहीं है फिर क्या करेंगे? याद में बाबा की श्री मत पर चलना होता है। जो सुन लिया है, जो समझ लिया है, जो स्वीकार कर लिया है, उसके अनुसार व्यवहार करना है। याद का मतलब है मेरा व्यवहार। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ हो, हर आत्मा के
प्रति।
अब कोई कहे कि मैं आप आत्मा से बहुत प्यार करता हूं, अच्छा बाकी आत्माओं को भी मैं आप आत्मा से बहुत प्यार करता हूं, तो बाकी आत्माओं को क्या करते हो? उससे प्यार नहीं करते हो ना। तो प्यार हमारा एक से हो गया तो हद का हुआ ना। तो बाबा कहते प्यार कैसा होना चाहिए? बेहद का होना चाहिए। और बेहद का प्यार का मतलब है मुझे हर आत्माओं के साथ एक जैसा व्यवहार करना, वो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं, अपने कानून बना करके नहीं कि मैंने कानून बना रखा है मैं ऐसे सबके साथ रहूंगा, वो नहीं, बाबा की श्रीमत के अनुसार कि मेरा व्यवहार किसी भी आत्मा को दुख नहीं दे, किसी भी आत्मा से दुख नहीं ले, सबको सुख देना है और सुख देना। याद में तो सुनना बंद हो जाएगा, हो जाता है, कई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु ये याद थोड़े ही है, ये याद थोड़े ही है। बाबा खुद कहते हैं, ये ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं, मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करने बैठता हूँ, बाबा आप तो अभोक्ता हो, ये कैसे कहूँ, बाबा आप भी खाते हो हम भी खाते हैं। क्या समझ में आया? इस लाइन के अंदर देखिए कितनी बड़ी गहराई है इस लाइन के अंदर, ठीक है नहीं? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं भूल जाता हूँ बैठता हूँ, बाबा आप तो अभोक्ता हो, आप तो खाते नहीं हो, अब मैं आपको कैसे कहूँ कि आओ आप मेरे साथ भोजन खाओ। और मैक्सिमम बाबा के बच्चे यही कहते हैं, बाबा आओ भोग लगाओ खाओ, जो ये कह रहे हैं आओ बच्चे आओ बाबा भोग लगाओ खाओ, उनको नहीं पता कि परमात्मा अभोक्ता है, परमात्मा अभोक्ता है, वो खाता ही नहीं, उसको कह रहे हो खाओ, गलत बात है ना। मतलब ज्ञान नहीं समझ में आया ना। अभी हम भी खाते हैं, कहते मैं कैसे कहूं, श्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं कैसे कहूं कि हे बाबा आप तो अभोक्ता हो, आप भी खाते हो हम भी खाते हो। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है, मुख्य है याद की यात्रा। अब कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है, तो मतलब इसका मतलब क्या है? बाबा साथ है का मतलब बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़ी है तो बाबा साथ है, यदि श्रीमत की उंगली नहीं पकड़ी है तो बाबा साथ नहीं है। बाबा के वाली लाइन को फिर से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बाबा आप तो अभोक्ता हो, ये कैसे कहूं, बाबा आप भी खाते हो हम भी खाते हैं, ये मैं कहूं कैसे? और हम कह रहे हैं तो कितना गलत है, तो नए बच्चों को ऐसा कहना तो ठीक है क्योंकि वो अभी तक मूर्ति को भोग लगा के खाते आए थे, अब चलो भी उसको छोड़ो अब तुम उसको को, नयों को तो ठीक है भोग के लिए मना नहीं किया जाए, परंतु बाबा सीधी बात समझा रहे हैं। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है, तो बाबा साथ कैसे है? वो साथ क्या करेगा? उसने अपनी श्रीमत दे दी, उस श्रीमत पर चल रहे हो तो बाबा साथ है, बाबा याद है, और नहीं तो बाबा याद नहीं है। मुख्य है याद की यात्रा, मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। ज्ञान कहते हैं इसे, याद से पवित्र बनते हैं, ज्ञान से नहीं, ज्ञान से तो समझ मिलेगी परंतु उसको प्रैक्टिकल करोगे तो पवित्र बनोगे, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना, ब्रह्मा बाबा में था ना। मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, मेहनत है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते, बिल्कुल याद नहीं कर सकते। याद में रहने वालों की अवस्था, बोल चाल बिल्कुल अलग रहेगा, क्योंकि याद में रहने वाले की अवस्था से पता लगेगा ना कि वो क्या बोल रहा है, कैसा चल रहा है। याद से ही सत्व प्रधान बनेंगे, क्योंकि व्यवहार से बनेंगे ना। चरित्रवान सत्व प्रधान, सत्व प्रधान किससे बनेंगे? व्यवहार से बनेंगे। परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। किसको बुद्धू बना देती है? आत्मा को। मोह जो नहीं था, भक्ति मार्ग में भी ऐसा मोह नहीं था, और अब ज्ञान मार्ग में आने के बाद उथल मारता है, उथल मारता है ज्यादा। ये तो मेरा बेटा है ना, वहां बेशक ना आता हो मेरा बेटा है, परंतु यहां आखिर इसके लिए तो कुछ कर जाऊं, उथल पड़ता है, फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। मुरली सुनना ये सब्जेक्ट अलग है, ये है धन कमाने की बात, इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे, सतयुग में आने के अधिकारी नहीं बनेंगे, लंबी आयु वाला जीवन लेने के अधिकारी भी नहीं बनेंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं और फिर भी विकार में गिरते रहते हैं, सच नहीं बताते हैं, बाप कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते, तो यहां क्यों आते? फिर कहते हैं बाबा मैं अजामिल हूं, मैं पापी हूं, मैं मानता हूं, यहां आऊंगा तो पावन बनूंगा, यहां आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहां जाऊं बता। रास्ता तो यही है ना, और तो कोई रास्ता है नहीं। ऐसे ऐसे भी आते, बाबा कहते ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं, बताओ मैं और कहां जाऊं, और कोई रास्ता तो है नहीं, क्या नहीं। ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा, आते रहेंगे तो कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा यहां के लिए भी कहते हैं यहां कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए, ये तो इंद्र सभा है, अभी तक तो आ जाते हैं, एक दिन ये भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, ये भी अध्यादेश निकलेगा, जब पक्की गारंटी करें तब अलाउ करें, तब उनको आने की अनुमति दें, तो समझेंगे ये तो ऐसी संस्था है, कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो ये किसकी सभा है, हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखरीन में बहुत आ जाएंगे, आखरीन में क्या होगा, बहुत आ जाएंगे, तो फिर कोई हंगामा आदि कर ना सके, फिर कोई हंगामा आदि कर ना सके। इस धर्म के जो होंगे वे निकल आएंगे, वे निकल आएंगे। आर्य समाजी भी हिंदू है, हिंदू सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है, देवताएं हैं सतयुग में, यहाँ सब हिंदू हैं, वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, ये हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते सुदर्शन चक्रधारी बनना है, स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना, सारा चक्र बुद्धि में है, देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है, पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, हम ये बन रहे हैं। वे देवताएं फाइनल हैं, वे देवताएं क्या हैं? फाइनल हैं। तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें नॉलेज है ना, वे है तुमको बनाने वाले, तुम हो बनने वाले, तुम हो ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब ये अलंकार तुमको कैसे दें? अब तुम पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु के कुल के बनते हो। सतयुग वैष्णव कुल, सतयुग क्या है? वैष्णव कुल है ना, तो ऐसा बनना है तुमको, तो मीठा बनना है, तुमको तो मीठा बनना है। ऐसा वैसा अक्षर ना बोलने से ना बोलना अच्छा है, तो उल्टा सुल्टा अक्षर बोलने से तो अच्छा है कि बोलो ही मत। एक दृष्टांत है, दो लड़ते थे। सन्यासी ने कहा मुख में मुलहरा डाल दो, डाल लो, कभी निकालना नहीं, रेस्पॉन्ड मिल ना सके, ना तुम कुछ बोलोगे ना उधर से कोई तुम्हें कुछ कहेगा। पांच विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है, कोई तो अपना अनुभव बताते हैं। हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है, बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे और आज, आज तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही बनेंगे। जो सर्विस करेंगे उनका नाम जरूर बाबा भी लेंगे। रास्ता बताना चाहिए, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते तो उनको रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट आती है, अभी ये अच्छी तरह ज्ञान को समझते नहीं है, धारणा नहीं करते। बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है, बाबा जानते हैं ये रूहानी सर्विस नहीं कर सकते, तो फिर स्थूल सर्विस, स्थूल सर्विस करो, कर्मणा सेवा करो, बाबा की याद में रहे सर्विस करें तो अहो भाग्य। एक दो को याद दिलाते रहो, याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वाले को फिर चार्ट रखना है, चार्ट से मालूम पड़ जाता है हर एक को। बाबा सावधान करते रहते हैं, विश्व में शांति बहुत मांगते हैं। जरूर कभी विश्व में शांति थी, सतयुग में अशांति का, अशांति की कोई बात भी नहीं। स्वीट बाप स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं, अब स्वीट कहाँ है? अभी तो स्वीट नहीं है, मौत ही मौत लगा पड़ा है। और ये खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है, एंड हो नहीं सकते, चक्र फिरता रहता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। नंबर दो, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने की बजाय ना बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। वरदान है सेवा में रहते कर्मातीत सिद्धि का अनुभव करने वाले तपस्वी मूरत भाव। सेवा भी करो और कर्मातीत, कोई भी काम करते हुए उसके प्रभाव से मुक्त तपस्वी मूरत भाव। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जन रहती है, सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। क्योंकि हम जिनके संपर्क में आएंगे उनके साथ हमारा व्यवहार आएगा ना, स्वार्थ भी समाया होता है, उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर लेती है। इसलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो, कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो, मन में बस एक बाबा दूसरा ना कोई, ये स्मृति इमर्ज हो। सब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूरत। स्लोगन है, कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कोई भी कारण के जो नेगेटिविटी है, उल्टा प्रभाव है, उसका समस्या का समाधान करो और क्या बनो, पॉजिटिव बनाओ। अच्छा, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त मास चल रहा है, विशेष योग के लिए फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, उल्टे सुलटे बोल व कर्म से मुक्त बनो, इन पर रोक लगाओ। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। तो अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।